ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जाने का दिन है। 5 दिवसीय शिविर पूरा होने को आ रहा है और जाने का दिन मतलब जर्नी टुवर्ड्स अ न्यू एरा। तो वो जर्नी कैसे सफल रहे, उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सब बताने के लिए हमारे बीच में आज पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो पता चलता है आध्यात्मिकता के और आपके कदम बढ़ते चले हैं, है ना। वैसे भी भले ये जाने का दिन है, लेकिन जाना भी किस लिए है, पुनः आने के लिए ही है ना। वैसे भी कहते हैं जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यही कपड़े बदल बदल के, है ना, यही कहते हैं ना। लेकिन जब जाना है और फिर मिलना भी है, तो फिर वो भी बात याद आती है। वो गीत गाते हैं ना लौकिक में, इतना जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की, सखियों के संग बैठ जरा कुछ बातें हैं समझाने की। क्योंकि जहाँ जाना है वो सफल यात्रा होनी चाहिए ना, तो वहाँ उस फिर वहां से लौट कर आना है। तो लौट कर जब आओगे तो ऐसे ही नहीं आओगे, बदल के आओगे। हाँ, खुशखबरियां लेके आओगे कि हमने इतनों को बाबा का संदेश दिया है और हम भी इतने बाबा के आध्यात्मिक राह पर बहुत आगे बढ़े हैं। ये खुशखबरी के साथ, ऐसे परिवर्तित जीवन के साथ आपको लौटना है। तो उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए और क्या कुछ अभी तक आपको हम नहीं बता पाए, वो सब कुछ आज के सेशन में हमारे दीदी जी कवर करेंगे। क्योंकि वैसे ही दीदी के लिए बाबा ने वरदान दिया है, आपके मुख पर सरस्वती सदा विराजमान होगी। तो आज के लिए, आपकी यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी है, बाबा स्वयं उनके मुख पर सरस्वती विराजमान होकर आपको जो चाहिए वही वहां से कहलवाएगी। तो आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति जरूर कहती है। और क्या इसका अर्थ है 3 बार क्यों? पहला है हम कौन है, हम कौन है। तो हम कौन है, सभी अपने आप को आत्मा समझते हैं ना। हाँ, मैं फलाना हूँ फलाना हूँ अभी तो नहीं कहेंगे, मैं आत्मा हूँ। तो हम कौन है, आत्मा। फिर हम किसके हैं, दादी जानकी सदा याद कराती है हम किसके हैं। वैसे तो कहेंगे भाई दुनिया में सबके हैं, लेकिन आत्मा किसकी है? एक परमात्मा की है। तो हम किसके हैं? उसी परमात्मा के हैं, वही हमारा पिता है। और फिर तीसरी बार ओम शांति, हम किस लिए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ इस संसार में? अभी बता ना, चोला बदल बदल के या जो भी कैसे जैसे फिर आएंगे, लेकिन क्यों आए हैं? अपना पार्ट बजाने, ये तो एक कारण है, और भी कारण है क्यों आए इस संसार में। क्यों आए हैं जी? कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने। अच्छा, और क्यों आए हैं? बस इतना ही? बहुत कारण है, बहुत कारण है क्यों आए इस संसार में जी। पाठ बजाने, ये तो एक कारण बहुत अच्छा है, लेकिन वो पाठ कैसा बजाना है? केवल कर्मों का हिसाब किताब चुकचुक करने ही नहीं आना है, क्योंकि नए भी तो बहुत कर्म बनाते हैं ना, कितने नए नए कर्म बना लेते हैं, फिर वो चुकचुक करना है, फिर नए कर्म बनाओ चुकचुक करते। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि केवल कर्म चुकचुक करने आते, क्योंकि बनाते भी हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे, क्यों आए हैं? फिर से वहाँ जाने के लिए आते हैं। अच्छा, आते हैं ताकि जा सके वापस, ऐसे? लेकिन कुछ लक्ष्य लेके संसार में आए होंगे ना। कौन सा लक्ष्य लेके आए थे? देवता बनने का लक्ष्य। क्या लक्ष्य लेकर के संसार में आए? वास्तव में आत्मा, नहीं तो क्योंकि शरीर के बिना कर्म तो कर नहीं सकती है, पाठ बजाने लिए भी शरीर चाहिए। तो कई कहते क्यों इस संसार में आए, क्या जरूरत थी भगवान को हमको इस दुनिया में भेजने की? पहला प्रश्न तो यही करते हैं भगवान से। तो क्यों संसार में आई, क्यों भगवान ने हमें भेजा इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने लिए? क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। तो वो संस्कार शरीर में जब तक न आए तब तक कैसे बजाए, और ये रंग मंच उसको न मिले तब तक कैसे बजाए? एक एक्टर है, उसमें बहुत अच्छी कला है एक्टिंग की, एक नृत्य नृत्यांगिनी है, नृत्य करने की कला है, लेकिन मंच तो चाहिए ना, स्टेज तो चाहिए ना। एक बहुत अच्छा गीत गाता है, लेकिन उसको साधन चाहिए, म्यूजिक चाहिए, माइक चाहिए, ये सब चाहिए। एक सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन इक्विपमेंट्स तो चाहिए ना। तो शरीर क्या है? हमारा साधन है। तो आत्मा जिसके द्वारा कर्म करती है, तो क्यों आए संसार में? वो आत्मा के अंदर जो संस्कार है वो व्यक्त करने। अब प्रश्न दूसरा है, क्यों आए हम? कौन है? तो आत्मा एक्टर हूँ, इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आए हैं। पर क्यों पाठ बजाने आए हैं, क्या पाठ बजाने आए? तो फिर दूसरी बात कहेंगे कि आत्मा के अंदर जो मूलभूत गुण है, आपको बताया होगा पहले दिन, आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये मूल गुण हैं, जिनको हम कोर वैल्यूज कहते हैं। कोर, हर चीज की कोर चीज होती है, उनकी जड़, उनका बेसिस, आधार। तो आज जितने भी संसार में मूल्य बताए जाते हैं ना, फैमिली वैल्यूज बताते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज या प्रोफेशनल वैल्यूज, कई प्रकार की वैल्यूज बताते हैं, हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज होती है। लेकिन इन सब के जो बेसिस है, ये 7 गुण हैं। और जब इन 7 गुणों को समझते, ये हमारे अंदर ही है, तो हम क्यों आए संसार में? ये गुणों को अपने मन वचन कर्म से व्यक्त करने, उसको हम, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट करने, जो आत्मा के अंदर निहित है उनको हम मैनिफेस्ट करने आए हैं। तो इसलिए इस संसार में आए। फिर हम कहते हैं कि हम किसके हैं? तो हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के हैं, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तो जब ये कहते ना मन नहीं लगता परमात्मा में, तो क्यों नहीं लगता है? उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, देह समझते हैं। तो जो देह समझते हैं तो देह के साथ जो संबंधित बातें वही मन में आएगी, परमात्मा कैसे आएगा? आएगा। अब मैं एक माँ हूं तो कौन मन में आएगा? बच्चे आएंगे। मैं एक डॉक्टर हूं तो कौन मन में आएगा? पेशेंट्स आएंगे, बीमारियां, दवाइयां, हॉस्पिटल। तो इसीलिए जो अपने आप को जिस स्थिति में देखते उसी अनुसार वही बातें याद आएगी। तो इसी प्रकार मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। लेकिन अगर देह समझ लिया तो देह का कनेक्शन तो सब देहधारियों के साथ है। तो इसीलिए मन नहीं लगा परमात्मा से। तो इसलिए जब ये समझा कि मैं तो एक आत्मा हूं और मैं संसार में पार्ट बजाने आई हूं, तो फिर मेरा कैसा पार्ट होना चाहिए? जो आत्मा के अंदर मूलभूत गुण है वो मुझे व्यक्त करने हैं। और इससे क्या होगा? जिस परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है उनका नाम रोशन करने आई हूं। भगवान ने भेजा ना, हम क्या कहते हैं? हमको किसने भेजा इस दुनिया में? भगवान ने भेजा। तो एक तो जिसने भेजा है उसको याद करना है, और किसको भेजा है? आत्मा को भेजा है। जिसने भेजा है उसको याद करना है। अगर देह समझेंगे तो देह माना प्रकृति, तो प्रकृति याद आएगी। ईश्वर ने भेजा है तो ईश्वर याद आएगा। क्यों भेजा है? जो आत्मा के अंदर मूल गुण है ये मन वचन कर्म से व्यक्त करने के लिए, जो विशेषता कला है आत्मा के अंदर। और इससे क्या होगा? इससे हम अपना तो नाम रोशन करेंगे, क्यों नहीं? किसके अंदर विशेषताएं होती है तो लोग वर्णन करते हैं ना। लेकिन जो मुख्य बात है, जिस लक्ष्य से हम ये कर रहे हैं, उस परमात्मा का नाम रोशन करने लिए कर रहे हैं। आज कोई विदेश जाता है, आपकी कंपनी आपको भेजती है, मान लो आप कि वहां जाकर के कुछ नई बातें सीख के आओ, कुछ और टैलेंट्स लेकर आओ, कुछ और ताकि कुछ हम अपनी प्रगति कैसे करें। तो इसलिए भेजते हैं, विदेश भेजते हैं कि वहां कुछ सीख के आए, और वहां जाकर के केवल खाओ पियो मौज करो करे हो। विदेश में जाते ना भाई, हॉलीडे समझ कर गए, और भेजा कंपनी ने, पैसा खर्च किया कंपनी ने, सारा उनके ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है, और वहां जाकर के सब भूल गए और बस खाओ पियो मौज करो, धन कमाओ, ये करो वो करो, स्थूल बातों में ही लगे रहे। जिस लक्ष्य से आए थे वो लक्ष्य तो भूल ही गए। अब फिर क्या होगा? उस परमात्मा का नाम रोशन तो नहीं कर सकेंगे ना। तो आज क्यों ये हालत हो गई? किस लिए संसार में आए यही पता नहीं था। तो क्या समझ लिया? बस खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, इसलिए तो हम इस दुनिया में आए हैं। या जमा करो जमा करो जमा करो, जमा करने लिए थोड़ी आए हैं, क्योंकि लेके तो कुछ भी नहीं जाना है इस संसार से, सब यहीं रह जाना है। तो इसलिए नहीं आए हैं हम। नाम मान शान महिमा इसलिए भी नहीं आए। चलो ये मिल भी जाए ना, जब मनुष्य मर जाता है दो चार दिन याद करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो भूल ही जाना है ना। फिर तो कहां तक बैठ के याद करते रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ और है याद करने लिए। तो इसलिए भी नहीं आए। लेकिन हम जो कर्म करने आए हैं वो किसकी याद में करें और किसका नाम रोशन करें, जिस वो लक्ष्य हमारा है। और फिर है कि जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है। हर चीज अपने स्रोत के पास जाती है। आप दिया सलाई जलाते हैं तो वो अग्नि कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका सोर्स क्या है? सूर्य। लाइट का सोर्स सूर्य है। हम पानी गिराते हैं तो पानी नीचे गिरता है, क्यों? बोले साइंटिफिक रीजन हम कुछ भी बताएं, लेकिन अगर इसको एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल देना है तो ये क्यों नीचे जाता है? क्योंकि इसका जो सोर्स है पानी का वो सागर है। तो पानी कहाँ जाएगा? आखिर करके चाहे कहीं भी जाए, आखिर करके वो सागर में जाएगा। तो इसीलिए हर एक अपने सोर्स के पास वापस जाती है। तो मैं आत्मा भी उस परमात्मा के घर से आई हूँ, परम धाम से आई हूँ, परमात्मा से आई हूँ, वहीं मुझे जाना, ये कभी भूलना नहीं है। किस लिए आई हूँ वो भी कभी भूलना नहीं, मैं कौन हूँ ये तो भूलना ही नहीं। तो मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मैं किस लिए हूँ, बस ये तीन बातें सदा याद रखो तो क्या होगा, हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। और जैसे बताया हम सब यात्री हैं, तो इस यात्रा में कितनी बातें याद रखनी होती है। पहले तो मंजिल कभी नहीं भूलनी, जब कोई निकले अमरनाथ जाने लिए और रास्ते में भूल ही जाए कि अमरनाथ भी जाना है तो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। तो अमरनाथ जाना है पहले तो लक्ष्य याद रहे, तो वो हमारा लक्ष्य है, जहां से आए थे वहीं वापस जाना है, उस घर से आए थे फिर उस घर में जाना है। देवता बनना है वो तो जब वहां से पहले आए तो देवता थे, फिर देवता बनना है, लेकिन पहले किसको याद करना है, क्या याद करना है, उस घर को याद करना है जहां से आए। इसलिए गाते ना, कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो हम सब मुसाफिर हैं, तो हमारी मंजिल हमारा ठिकाना एक ही है, वो कभी न भूले। तो अब तो पहली बात यात्रा में वो मंजिल याद आती है, लेकिन और दूसरी बात कौन सा रास्ता लेना है उसके लिए। अब अमरनाथ जाना है और रास्ता साउथ का ले ले तो पहुंचेंगे, नॉर्थ ही लेना है ना। अमरनाथ कहाँ है, कितना हिमालय में, तो वहां तक हमें जाना है, तो उसी अनुसार ही रास्ता लेंगे। तो इसी प्रकार दो मार्ग है, एक मार्ग तो भक्ति मार्ग का था, हमने उसमें भी समझा कि हम इससे भगवान से मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, यही सोचा था ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि उससे मुक्ति नहीं मिलती, उससे घर नहीं जाते, हम तो और ही नीचे उतरते गए, क्योंकि खुद को ही भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, किसकी भक्ति कर रहे उसका भी पता नहीं था। था ना भक्ति, ये कितना अच्छा ड्रामा किया आप लोगों ने, तो किसकी भक्ति कर रहे ये इसका भी पता नहीं। तो आखिर फिर ज्ञानी तो आत्मा को बताना पड़ा कि आप जिस गणेश की पूजा करते हो वो आखिर किसकी निशानी है। तो इसलिए वो ज्ञान है, तो ज्ञान माना समझ, तो हमको परमात्मा आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग है, एक है ज्ञान मार्ग जिसमें जो मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनका उत्तर मिलता है, जवाब मिलता है। कितने प्रश्न मन में उठते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न, पहले तो आत्मा के बारे में प्रश्न, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों इस संसार में आया, क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं था, अब वो पता चला। फिर दूसरे प्रकार के प्रश्न ईश्वर के बारे में, वो कौन है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, कब आता है, क्या देता है, कैसे मिल सकते हैं उनसे, कितने प्रश्न। अब परमात्मा ने उन प्रश्नों का भी हल दे दिया है। फिर तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं कर्म के बारे में, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कितने प्रश्न आते हैं कर्म के बारे में। तो हम कैसे माने कि ये पुण्य है ये पाप है, यहाँ तक कि कई कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, किसी के लिए वही भोजन है और किसी के लिए वही जहर है, ये कहते हैं। लेकिन फिर भी पॉइजन को तो पॉइजन कहेंगे, भोजन को भोजन कहेंगे, पर वो भोजन पॉइजन बन सकता है अगर उसको एक्सेस में लेते हैं। अब कोई भी दवाई है, हम दवाई लेते हैं, भाई हम डॉक्टर कहेगा इतना ही डोज लेना है, एक ही गोली खानी है, अब नींद नहीं आती, एक ही गोली खानी है, हाँ एक ही गोली, आधी गोली बस, इससे ज्यादा नहीं। अब कोई सोचे भाई ये बहुत नींद नहीं आती, चलो 10 गोली खा लो तो अच्छी नींद आएगी, तो अच्छी नींद आएगी या सदा के लिए जाएंगे हाँ, तो अच्छी नींद आएगी तो ज्यादा खा लो, ऐसे तो नहीं ना। तो इसीलिए पॉइजन को हम पॉइजन ही रखेंगे, भोजन को भोजन ही रखेंगे, पर वो पॉइजन बन सकता है अगर उसका सही हिसाब नहीं रखा तो। इसीलिए कर्म जब हम करते हैं तो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति के लिए वही कर्म अच्छा है दूसरे के लिए वही कर्म बुरा है, नहीं नहीं, अच्छा माना अच्छा, बुरा माना बुरा। तो किसको कहेंगे अच्छा कर्म, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे बुरा कर्म? तो शिव बाबा ने हमें उसका भी ज्ञान दिया है कि जो भी कर्म देह अभिमान में आकर के, देह अभिमान में आकर ना, मैं देह अभिमान में आकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेराफेरी बेईमानी छल कपट निंदा चुगली, क्योंकि इससे उस किसी को दुख मिलेगा, तो कोई भी कर्म इन विकारों के वश है वो कर्म पाप बनता है, वो कर्म पाप बनता है। और जो कर्म हम सबके भलाई के लिए करते हैं वो कर्म पुण्य बनता है। बस इतना डिमार्केशन लाइन लगा लो। इसलिए एक दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो पाप का मूल क्या है, पाप की जड़ क्या है, अभिमान है। तो कोई कहे कैसे पता चले ये पाप है या पुण्य है, तो क्योंकि पाप की जड़ ही देह का अभिमान है, और जो कर्म देह अभिमान से शुरू हुआ वो पाप के खाते में जाएगा, समझ लो। अब ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो विकार हैं, ये कैसे पाप बनाते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों का भोग है ये पांच विकार। थोड़ा गहराई से समझना होगा, काम विकार क्या है? काम विकार इज जस्ट अट्रैक्शन ऑफ द स्किन, चमड़ी, हाँ, जिसको कहते हैं स्पर्श रस है, स्पर्श रस। अब ये स्पर्श रस का एक्सट्रीम है काम वासना। आजकल तो हाँ रेप, और वो भी मास रेप, पता नहीं कहां तक क्लाइमेक्स तक पहुंच गए हैं। तो और उसका जो सबसे हल्के से हल्का फॉर्म है काम वासना का, या मान लो सेंस ऑफ टच का, स्टार्स विद सेंस ऑफ टच ना, तो उसका सबसे हल्के से हल्का, विच मे नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिन बट फिर भी है। हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, और म्यूजियम में जब जाते हैं तो वहां लिखा रहता है प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, पढ़ते जाते हैं, स्टिल व्हाट डू वी डू, फिर भी क्या करते हैं, हा? टच करने की कोशिश करते हैं। क्यों? जब लिखा है तो मत करो ना हाथ, मत लगाओ ना हाथ, क्यों हाथ लगाना है, क्यों हाथ लगाना है? ये चमड़ी का आकर्षण, तो देखे तो सही ये कैसा है, हा? देखे तो सही, देखे तो सही। अब ये काम वासना का सबसे हल्का रूप है, अट्रैक्शन टू द स्किन और सेंस ऑफ टच, इसकी का विकराल स्वरूप काम वासना है। क्रोध, क्रोध कौन से सेंस से पता चलता है कि इसके अंदर गुस्सा है? गुस्सा एकदम से नहीं निकलता है, पहले गुस्सा कैसे निकलता है, पहले आंख से निकलता है, जब कहेंगे भाई इसकी आंख में गुस्सा है। वैसे कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, ऐसे कहते हैं। फेस पर हमारे मन की बात आ जाती है, यू कान हाइड एनीथिंग। तो चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन उस चेहरे में भी आंखें, ये पूरा मन का दर्पण है। और गुस्सा जब अंदर में भरा पड़ा है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले आंखों से निकालते हैं और फिर मुख से निकालते हैं और फिर हाथ से निकालते हैं ना, कैसे कैसे, फिर नाक से निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं क्रोध अपना। पर शुरुआत कहां से होती है, आंखों से। तो ये क्रोध आंखें, ये आंखें बहुत धोखेबाज भी है, बहुत धोखा दे सकती है आंखें। लेकिन बाबा कहते कोई ऐसी आंखों को फोड़ देना है, आंखें तो जहान है लेकिन इन आंखों को सिविल बनाना है, आंखों को सिविल बनाना है। चमड़ी को हम स्पर्श भी क्यों करें, क्या जरूरत है हमको किसी को हाथ लगाने के लिए, जरूरत ही नहीं है। तो आत्मा हो तो बस आत्मा को देखो ना, तो हम सहज काम वासना से भी बच जाएंगे, क्रोध से भी बच जाएंगे। क्यों, कैसे बचेंगे क्रोध से, क्योंकि मन तो हम पता है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो वो आत्मा भी शांत स्वरूप है, तो शांति से हम देखेंगे, आंखों से क्रोध नहीं निकलेगा। ये आंखें मन का दर्पण है, तो अगर मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी तो हमारी दृष्टि कैसे हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा शिव बाबा कहते हैं आत्मा देखो सबको, आत्मा, इस दृष्टि को सिविल बनाओ, बाबा यूज करते सिविल, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, आंखों को फोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्रोध कैसे खत्म होगा, अंदर में जब ये महसूस करेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, तो शांति ही आंखों से दिखाई देगी। इसलिए देखो दृष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसे शांति का अनुभव होता है। जो व्यक्ति बहुत कामी होता है, क्रोधी होता है, उसकी आंखें कैसे होती है, दिखाते हैं ना चित्रों में भी। फिर लोभ का विकार कैसे शुरू होता है, लोभ कहां से, कहते जीभ रस। तो पहले स्पर्श रस, फिर नेत्र रस, फिर जीभ रस, ये लोभ की निशानी। पेट को कितना चाहिए, खाली खाने पीने का लोभ नहीं है, कितनी चीजों का भी लोभ होता है। तो पेट को कितना चाहिए, दो रोटी चाहिए, कितना चाहिए। कई कहते हैं कि ये पेट ही पाप कराता है, ये सही है, सही है, पेट पाप कराता है, क्योंकि पेट बेचारे को ज्यादा नहीं चाहिए, पर कौन पाप कराता है, पेटियां पेट पाप नहीं कराता है, पेटियां पाप कराती है, क्योंकि पेटियां तो कई है, पेट तो एक ही है, दो पेट भी नहीं है। ये गाय भैंस बैल ये जो है ना, इनमें दो पेट होते हैं, पता है आप लोगों को। गाय जो है ना वो एक ही साथ बहुत चारा अंदर खा लेती है, फिर एक दूसरा पेट है जिसमें वो आधा खाया हुआ स्टोर करती है, फिर वो सारा दिन उसका मुंह चलता ही रहता है, देखा होगा ना गाय का, खा नहीं रही है तो भी मुंह चलता है, क्योंकि जो आधा खाया हुआ है वो दूसरे पेट में रखा हुआ है, और वो दूसरे पेट से निकाल करके फिर मुंह तक आता है, फिर चबाती है, फिर वो पेट में जाता है, इसलिए दो पेट होते हैं। पर मनुष्य शरीर का तो एक ही पेट है, लेकिन तो कितना चाहिए इंसान को, पेट पाप नहीं कराता है, तो लोभ चाहिए चाहिए। इसीलिए बाबा हम लोगों को इतना समझाते हैं, ये चाहिए कि नहीं है, ये चुही है, चुही चुही होती है ना, चुही वो छोटा चूहा होता है, वो चुही बोलते हैं, वो कुतर 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 कुछ न कुछ करती रहती है, करती रहती है, जैसे मुंह उसका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चूहे का भी ऐसे 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 ना, बस उसके चाहिए उसको कुछ न कुछ। तो लोभ भी ऐसे ही है। और शिव बाबा ने हमें क्या कहा है, संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट आत्मा। कई कहते हैं कि हम ऐसे संतोष धारण करें तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। हम कहते हैं पुरुषार्थ करना अलग बात है, लेकिन अंतर में संतोष रखना ये अलग बात है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हाँ जी, हाँ वो तो है ना, कर्म का फल की इच्छा मत कर, कर्म करो पर कर्म के फल की इच्छा मत करो, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ये जरूरी है, पर मेरी याद में करो और फल की चिंता मत करो, वो फल भी मुझे मुझ पर ही छोड़ दो, क्योंकि देने वाला तो वही है ना। कर्म अच्छा करो, तो सत कर्म बाबा कहते करो, पाप कर्म ये विकारों के वश होते हैं। तो ये जीभ या जीभ रस, फिर चौथा है मोह, तो मोह का कौन सा अंग है? मोह का है ये नाक, जिसमें मोह होता है ना, बस उसको ऐसे ऐसे उसको रगड़ते रहेंगे, उसको रगड़ते उसकी सांस, उसका जैसे वो स्मेल लेते रहेंगे, ये भी एक मोह की निशानी है। तो ये मोह है नाक, उसका स्मेल भी अगर ले मिल जाए ना, बस यही बहुत है, क्योंकि वो फिजिकल आकर्षण है, वो मोह हो गया। तो काम वासना का अलग रूप है और ये मोह का अलग रूप है। और फिर अहंकार, अहंकार का अंग कौन सा? ये कान। किसी ने मेरे लिए कुछ कह दिया मान लो, और मुझे बताया गया तुम्हारे लिए उसने ऐसे कहा, बस क्या समझता है वो ये कान। तो ये कान बड़े भी बताए हैं, जैसे गणेश जी के बड़े कान दिखाए हैं। बड़े कान दिखाने का मतलब है अगर कोई गलत सुना तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। सुपड़ी बताए ना, सुपड़ी, तो सुपड़ी में क्या करते हैं? छानते हैं, तो जो हल्का हल्का है वो सब फेंक दो, और जो धारण करने योग्य है वो अंदर ले लो। तो दो कान किस लिए मिले? एक कान से कोई गलत कुछ बात सुनी भी, चाहे आपके लिए किसके लिए भी, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि आपको क्या लेना देना है? वो क्या उसका, हरे का कर्म अपना, हरे का भाग्य अपना है, हरे का हिसाब किताब अपना है, हम उसके चिंतन में क्यों जाए? परसों बाबा की मुरली में था, ये भी पर चिंतन है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे गया, ये हमको क्या करना है उसके लिए? बाबा कहते आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो भी अभिमान अहंकार, जैसे कल बताया ना, दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज है। एक है हीनता की कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम भक्ति में अपने लिए कहते आए हैं भगवान के आगे, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, मैं कपटी हूँ, ये भी एक अभिमान का एक नेगेटिव फॉर्म है। और दूसरा एकदम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरे जैसा कोई नहीं, दोनों ही अभिमान का रूप है। परंतु ये कान किसके लिए हिरे हुए हैं? अपनी महिमा सुनने के लिए हिरे हुए, लेकिन किसने मेरी ग्लानि की तो बस खड़े हो जाते हैं। महिमा सुनने के लिए तो तैयार होते हैं ना, तैयार होते कि नहीं, वाह 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 मेरी प्रशंसा की, और महिमा की तो खुशी हुई, और ग्लानि की तो दुख हुआ, होता है ना, दुख होता है। तो बाबा कहते दोनों में समान रहना, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में स्थित प्रज्ञ, एक समान स्थिति, उस स्थिति को कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा की स्थिति। तो वो ज्ञानी तो आत्मा बनना माना उस अभिमान में भी नहीं आना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, और हीनता की भावना भी नहीं रखनी है, नहीं तो बलून होता है ना उसमें हवा भरो कितना सुंदर लगता है, पर जरा ये सुई प्रिक कर दो तो थोड़ा सारी हवा खत्म, उसकी सुंदरता ही खत्म हो जाती है। तो ये भी ऐसा ही है, महिमा करो तो एक बलून की तरह एकदम फूल गए, वाह 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 मेरे जैसा कोई नहीं, कॉलर अप। और ग्लानि की तो बस निराश नाराज डिप्रेशन न जाने क्या क्या आ जाता है, पर ज्ञानी तो आत्मा इसमें नहीं आएगा। वो स्थित प्रज्ञ होता है, एक रस अवस्था, वो 16 प्रकार के मूड्स बताए कैसे कैसे मूड्स होते हैं। परंतु जो ज्ञानी तो आत्मा होगा, योगी तो आत्मा होगा, वो इतने मूड्स नहीं बदलेगा, उसकी मूड सदा एक जैसी होगी। उस तब कहेंगे कि हाँ कि ये इन्होंने अपने विकारों को जीता है, इंद्रियों को जीता है, और बाबा हमसे यही चाहते हैं, देवता बनना है ना। तो देवता बनना माना देवताओं का अंग अंग कमल से भेंट करते हैं, सुना है, नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल। तो कमल से क्यों भेंट करते हैं? सतयुग में तो कमल से भेंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कमल तो वहां खिलता है जहां कीचड़ है। सतयुग तो में तो कीचड़ है ही नहीं। हाँ, पर देवताओं के अंग को कमल से क्यों भेंट करते हैं? वहां सतयुग के देवताओं के आगे तो कीचड़ है ही नहीं, तो वहां के अंग कमल समान है ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि कमल कीचड़ में ही है। हाँ, हमें यहाँ रह करके देवता बनना है, तो इसलिए ये यहाँ की बात है कि यहाँ हमको अपने अंग अंग को कमल के समान बनाना है। अब ये हाथ ही देखो, ये हाथ आशीर्वाद का भी हाथ है। गणेश जी को ऐसा आशीर्वाद का हाथ दिखाते ना, ये आशीर्वाद का भी हाथ है, ये दाता का भी हाथ है, ये वरदानी हाथ है, ये आशीर्वाद का हाथ है। किसी के सिर पर हाथ रखते हैं और ये वरदान देने वाले, ये सिर पर हाथ रखा मन आशीर्वाद देना देने वाले। फिर लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ये भी दाता का हाथ है, ये भी दाता का हाथ है, ये भी दाता का हाथ है, और ये भी दाता का हाथ है। लक्ष्मी के हाथ से ऐसे गिनिया निकल रही है। और ये हाथ, ये किसका है, भिखारी का हाथ। तो हमारा हाथ कैसा होना चाहिए, ऐसा 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 या ऐसा, लास्ट वाला कैंसिल, या ऐसा ऐसा भी होता है ना, ऐसा तो ऐसा भी नहीं, परंतु ऐसा ऐसा और ऐसा। ऐसा किया तो क्या कहेंगे जी, परमात्मा के सामने ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। अभी तो सुना ना, आप तो बच्चे हो ना, तो बच्चे माना अधिकारी, तब अभी तक तो भिखारी थे, इसलिए मांगते थे। भिखारी जो होता है ना, वो उसको चाहिए 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 चाहिए, वो भिखारी है। चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, पर फिर भी चाहिए, वो भिखारी है। कहा जाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है और लोभी नर कंगाल है, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। वो खुद भी दुखी रहेगा लोभी, और दूसरों को भी दुख देगा। निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हर दम देत। ईश्वर उसको देता है, इसको निर्लोभी रहे तो ईश्वर देता है, सब देता है। तो लेकिन अगर हम लोभी हैं तो हम चाहिए चाहिए तो भिखारी है, चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो। इस पर एक जोक सुनाते हैं। एक ने, यहाँ दो व्यक्ति थे, एक ने भगवान ने उनको कहा कि आपको क्या मन में इच्छा है, बताओ क्या चाहिए। तो एक ने कहा, भगवान मैं, मुझे इतना मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, बस वही मुझे चाहिए, कुछ सब कुछ मिलता जाए, मुझे ही मिलता जाए तो तब मैं खुश रहूंगा। दूसरे ने कहा, मैं दूसरों को देता जाऊं देता जाऊं देता जाऊं देता जाऊं, इसी में मुझे खुशी हो। तो पहले ने कहा लेता जाऊं, दूसरे का देता जाऊं देता जाऊं। तो जिसने कहा लेता जाऊं, उसको भिखारी बना दिया, क्योंकि वो लेता ही रहता है, तो उसको भिखारी बना दिया। और जिसने कहा देता जाऊं देता जाऊं, उसको क्या बना दिया, उसको देवता बना दिया, माना उसको दाता बना दिया, तो उसको धनवान बना दिया, उसको भिखारी बनाया, उसको अमीर बना दिया। तो मैं भी लेता जाऊं या देता जाऊं देता जाऊं, क्या देता जाऊं, सुख देता जाऊं, शांति देता जाऊं, प्रेम देता जाऊं। ये मांगने की चीजें है ही नहीं, कहिए ना, ये मांगते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे प्यार करो ना। प्यार मांगने की चीज होती है क्या, प्यार देने की चीज होती है। खुशी मांगने की चीज नहीं होती है, खुशी बांटने की चीज होती है, देने की। और कैसे बांटेंगे, कोई स्कूल थोड़ी है, कैसे बांटेंगे, मन से, अपने संकल्पों से, वाणी से और कर्म से। क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें, ये गुण भी सूक्ष्म है, ये मन वचन कर्म से बांटे जाते हैं या दिए जाते हैं, ये मांगे नहीं जाते। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैन नेवर बी आस्ट फॉर, दे कैन ओनली बी गिवन, एंड वैल्यूज कैनॉट बी टॉट। आप किसको वैल्यूज का खाली ज्ञान नहीं दे सकते हो, वैल्यूज कैन बी कॉट, नॉट टॉट बट कॉट। उसको आप पकड़ो दूसरे के अंदर, अब मेरे अंदर शांति का गुण है, और आप कहेंगे बहन जी थोड़ी शांति अपनी मुझे दे दो ना, मैं कैसे दूंगी आपको शांति, मेरे अंदर शांति है। और आप मांगेंगे शांति दो बहन जी, तो तो मैं कैसे दूंगी, कोई आइसक्रीम है क्या, लो शांति आइसक्रीम किसको खिला दो, मांगी और आइसक्रीम खिलाती, शांति कैसे दूंगी मैं, कैसे दूंगी। शांत रहकर ना वो प्रेरणा से लेगा। तो इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन टीच और समथिंग विच यू कैन गिव, यू कैन ओनली गिव इट थ्रू इंस्पिरेशन, दैट्स ऑल, थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस, नहीं तो कोई चीज तो नहीं है ना। तो ये हमारे ये पांच विकार जिनसे हम इन इंद्रियों द्वारा ये जो पांच विकार हम व्यक्त करते हैं, ये पाप का खाता बनाते हैं। और आज हमारे सिर पर कितना पापों का बोझा है पता है, इस एक जन्म का पापों का बोझा नहीं है। बाबा कई बार बताते हैं मुरलियों के अंदर, बच्चे 63 जन्मों से तुमने पाप किए, 63 जन्म द्वापर युग से, दे अभिमान जैसे शुरू हुआ तुमने पाप कर्म करना शुरू किया, अभी इतना बोझ है। और कैसे पता चलता है कि पापों का बोझ है, चार तरीकों से हमारे हमको पता चलता है ये पापों का बोझ है। पहला है शरीर का हिसाब किताब, रोग, शरीर के रोग, ये हमारा ही कर्मों का हिसाब किताब है, हम दूसरे को दोषी नहीं बना सकते इसके कारण मुझे ये रोग हुआ है, तो मेरा ही कर्म ना। तो तन का रोग, दूसरा मन की अशांति, अगर मेरे मन में अशांति है, बहुत बेचैनी है, परेशानी है, ये भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। मन स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, नहीं तो क्यों मन परेशान होना चाहिए, क्यों नहीं शांत रह सकते हैं, क्यों नहीं संतुष्ट रह सकते हैं? पर ये है माना कोई हिसाब किताब है। तो तन का रोग, मन की अशांति, धन की खिंचातानी, धन की कमी नहीं, धन की कमी नहीं है ये पाप का कारण, धन की खिंचातानी, धन है लेकिन हमेशा जैसे परेशानी है, ज्यादा है तो भी परेशानी है, रखे कहाँ, इतना सोना है रखे कहाँ। आजकल तो बहुत छापे पड़ रहे हैं पता है, रोज इतनी न्यूज आती है, हाँ छापे पड़ रहे हैं, बहुत पड़ रहे हैं, मोदी सरकार छोड़ने वाली नहीं है किसी को भी ऐसे कहते हैं। तो अब तो इतना डर कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं आखिर क्या होना है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। भूकंप हुआ तो क्या होता है, दब जाती है ना धरती में, दब जाता है सारा धन। मुझे याद है मैं वो जब 2001 में भूकंप आया था जबरदस्त, ये भुज में, अंजार भुज, बहुत जबरदस्त भूकंप आया था और कितना पूरा अंजार तो जैसे खत्म ही हो गया था सब, और लोग तो बहुत धनवान थे वहां पर सौराष्ट्र में, तो सब मकान से सब बाहर आ गए। अब बाहर तो आ गए और इतना सुंदर सुंदर मकान, और धीरे धीरे देखा सारे मकान ध्वस्त होते गए होते गए होते गए, और वो बाहर पड़े, ठंडी का समय था। तो अगले अखबार में क्या आ गया, करोड़पति रोडपति बन गया, करोड़पति रोडपति बन गए। तो कैसे बन गए, वो भूकंप ने खत्म कर दिया, सब दबा हुआ, वही अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं सब जैसे दब गया। कई बार बाढ़ आती है ना तो सामने देख रहे हैं सब कुछ पानी में चला गया 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 गया। हाँ? तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, अंत में तो यही होगा ना, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, आपके पास हिसाब कहाँ है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हिसाब किताब सही नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार है, यही कहेंगे ना, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, तेरा सो मेरा मेरे हाथ न लगा, ये सब करप्शन, लोभ, ये लोभ का विकराल स्वरूप है करप्शन, काम का विकराल स्वरूप है बलात्कार, क्रोध का विकराल स्वरूप है हत्या, लोभ का विकराल स्वरूप है भ्रष्टाचार, और मोह का विकराल स्वरूप क्या है, एक मकड़ी की जाल, मकड़ी की जाल बुनते ना हम, तो मकड़ी क्या करती है, अपना ही मुंह से जाला बुनती है और फिर उसी में फंस जाती है। और जब तक वो जाला वापस मुंह में न डाले तब तक वो उस मकड़ी अपनी जाल से निकल नहीं सकती है। तो ये मोह की निशानी। और अहंकार वो पहाड़ की तरह चढ़े तो चाखे, चलो वो रस पी लिया, पर गिरे तो चकनाचूर, ये लंबी खजूर। जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ा तो चढ़ गया, पर अगर गिरा एक बार तो वहां कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए, तो गिरा तो चकनाचूर, ये अहंकार के पेड़ पर चढ़ने के बराबर है। तो इसीलिए कैसे चार प्रकार का वो पाप है, एक तो तन का रोग, दूसरा मन की अशांति, तीसरा धन की खींचातानी, अधिक है तो भी डर, नहीं है तो भी दुख, और चोरी का माल तो मोरी में, एक कहावत है, चोरी का माल मोरी में, पता है मोरी होते हैं बॉम्बे की भाषा, ये गटर, गटर को मोरी बोलते हैं ना। तो इस पर कहानी बताते कि चार चोर थे, चार चोर। अब उन्होंने ठानी कि हम चोरी इतना इस घर में जाके चोरी करेंगे, तो एक घर में गए और खूब चोरी करके आ गए, माल खूब लिया उस घर से, और दौड़े दौड़े जंगल में आ गए, और जंगल में वो सारा माल जो लूट का माल था ना वो सब वहां रखा। अब रात हो गई थी, खाना नहीं खाया था, भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि ये दो जो चोर है ना वो यहाँ ही रहेंगे और थोड़ा लकड़ी से कुछ खाना बनाएंगे, उनके पास कुछ था जो भी था, यहाँ थोड़ा खाना बना लेंगे और तब तक दूसरे दो भी आ जाएंगे, दूसरे मकान की चोरी करके भी आ जाएंगे, तो फिर साथ में मिलके खाएंगे। अब वो दो चोरों ने खाना बनाया, अब बहुत देर हो गई, वो दो चोर लौटे नहीं थे, तो उन्होंने खा लिया, और खा लिया तो उनके मन में, अब चोर तो थे ही ना, तो उनके मन में आया कि वो जो दो चोर आएंगे वो भी खूब माल लेकर के आएंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जो भोजन इनके लिए बचा के रखा है इसमें जहर मिला देते, और ये आएंगे तो ये खाएंगे तो मर जाएंगे, तो वो जो होगा ना वो लूट जो लेकर आएंगे वो हम दोनों को ही मिल जाएगा, तो हमको चारों का मिल जाएगा। तो उन्होंने जहर मिला दिया, और वो जब आए तब तक ये सो गए, नींद आ गई इनको। अब वो जब आए देखा तो ये दो चोर सोए हुए, खाना यहाँ रखा है, तो पहले सोचा अभी हम क्या करते ना, इन दो को मार डालते हैं, क्योंकि अब हम जो लाए हैं ये मांगेंगे और वो भी वहां पड़ा है, हाँ बड़ा ही है, कौन कोई जंगल में नहीं आता, और वो पड़ा है तो ये मर जाएंगे तो सारा ही हमारा हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, उनको भी मार दिया। अब उसके बाद अब खाना खाया तो वो दो भी जिन्होंने मारा वो भी मर गए, अब चारों ही मर गए, तो वो धन किसका, चोरी का माल मोरी में। हाँ तो ये है हालत। इसीलिए किसी का भी कर्जा कभी नहीं रखना, अगर आपने किसी से लिया है वो वापस कर दो, फट से कर दो, नहीं तो क्या होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी जरूर वो मांग वो लेगा। इसीलिए जी हाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सहित आपको देना पड़ेगा, इसलिए फटाफट कर दो, हिसाब किताब चुकतू कर दो, किसी का भी हिसाब किताब रखो मत। और अगर दाता बनो तो और ही अच्छा है, कुछ और भी प्रकार का कर्जा होगा वो भी चुकतू हो जाएगा। इसलिए धन की खींचातानी, और कभी भी पाप का धन वो सुख नहीं देगा, सुख कभी नहीं देगा। किसी के बद्दुआ से कमाया हुआ धन, जबरदस्ती लिया हुआ धन, वो कभी हमको सुख नहीं देगा, ये कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए कहावत है कि जो सहज मिले वो दूध बराबर। सहज कोई अगर खुशी से प्यार से, हाँ बड़े बहुत भावनाएं हैं उस अनुसार वो कोई देता है ना गिफ्ट, स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? भाई वो प्यार की निशानी है, ये नहीं कि छोटी गिफ्ट दी तो कम प्यार है, बड़ी गिफ्ट दी तो बड़ा प्यार है, नहीं, जो भी दे वो प्यार की निशानी है। तो जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया ये मुझे चाहिए तो वो पानी बराबर। दूध शक्ति देगा, वो चीज आपको सुख देगी जो सहज मिली, पर मांगा और उसने कहा ठीक है चलो मांग रहा है दे दो छोड़ो। कई बार होता ना बोल मांग रहा है दे दो, क्या करना है रहने दो, नहीं तो पीछे पीछे पड़ता ही रहेगा, है ना, ऐसे कई बार होता है, दे दो। तो जो मांग लिया वो पानी बराबर है, पानी बराबर माना प्यास बुझेगी, उस समय आपको खुशी होगी कि मुझे मिला, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी। दूध तो शक्ति देगा ना, पर पानी केवल प्यास बुझाएगा, तो उस समय की खुशी बस, आगे उसका सदुपयोग करे न करे नहीं, परंतु लोभवश मांग लिया तो वो इतने तक ही रहेगा। और जो खींच लिया वो रक्त बराबर, जैसे खून अपने आप नहीं निकलता, खींचना पड़ता है, वो रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी है। तो जबरदस्ती किसका खींच लिया, अभी जैसे कोई आया बंदूक दिखाया हमको, निकालो सब, ये जो कुछ है ना सब कुछ निकालो तो हम क्या कहेंगे, लो भाई लो, जान बची लाखों पाई, जान मारो मत, आपको जो चाहिए सब ले लो, भले ले लो पर मारो मत, क्योंकि जान प्यारी है ना, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, धन गया तो कुछ नहीं गया, पर जीवन तो इम्पोर्टेंट है, वो तो मूल्यवान है, लेकिन देते समय वो मांग रहा है, बंदूक दिखा रहा है, दे दो दे दो, ये तो मार डालूंगा, तो हम देते समय अंदर में क्या सोचेंगे, जा ले मर मर मर, हा? बोलेंगे नहीं, वो हमको कहता है मैं मारूंगा, और हम क्या कहेंगे देते समय, जा मर जा जा ले जा ले। तो अब ये कैसे मिला धन, किसकी बद्दुआ से मिला, किसकी बद्दुआ से मिला। अब वो बद्दुआ से जो धन लिया जबरदस्ती, वो किस काम आएगा, वो कभी सुख नहीं देगा, कभी भी सुख नहीं देगा, ये समझ लो। इसीलिए कहते हैं जो सहज मिले दूध बराबर, सहज मिला नो प्रॉब्लम, पर डोंट, चलो कोई ऐसी बात है जरूरी तो मांग भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, पर लोभवश नहीं, और खींचने का तो कभी सोचना भी नहीं, जबरदस्ती किससे लेना है, क्योंकि वो दुख के साथ बद्दुआ के साथ मिलेगा, और वो दुख के साथ मिला तो वो दुख आपको लग गया, ये समझ लो, कितना भी वो मिला वो सुख नहीं देगा, ये सब कर्म का हिसाब किताब है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं विकारों को जीतो, तुम आत्मा कितने अच्छे कितने श्रेष्ठ योगी हो, तो योगी वो जिसका अंग अंग शीतल हो, एक एक अंग कमल के समान भेंट हो, तो ये बाबा ने हमें ये सब धारणाएं सिखाई, यही मुरली है, कल मुरली की कितनी बात कर रहा था, है कोई वो भाई कहाँ बैठा है, हाँ मुरली बैठा होगा मुरली में, लेकिन सच्ची बात है बाबा की मुरली रोज नित्य सुनो, रोज नित्य रोज एक एक पॉइंट में इतनी गहराई है, सभी शास्त्रों वेदों का उसमें सार है, सारे वेदों शास्त्रों का। अभी ये ज्ञान जो बाबा इस समय शिव परमात्मा हमें दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा तो केवल एक माध्यम थे, ब्रह्मा बाबा खुद कहते मैं भी स्टूडेंट हूँ, कई कहते हैं ना ये आपका कौन लगता है, तो हम कहते हैं, कई कहते ये आपका गुरु है, हम कहते गुरु नहीं है, तो फिर ये कौन है, आप इनको भगवान कहते हो, हम कहते भगवान भी नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, तो गुरु भी नहीं है, तो फिर कौन है ये हमारा, कौन है, हाँ कौन है जी, माध्यम है, लेकिन हमारा क्या लगता है, शिक्षक, शिक्षक तो शिव बाबा है, हा? ये हमारा अलौकिक पिता है, अलौकिक पिता, एक होता है लौकिक पिता शरीर का पिता, दूसरा है आत्मा का पिता शिव बाबा, और ये है अलौकिक पिता, जिसके द्वारा शिव परमात्मा ने हमें नया जीवन दिया है। अभी हम क्या कहते हैं, हमको एक नया जीवन मिला है, कल भी बताया ना, मैं कितना क्या बताया आपने, कितने साल, कितने महीने का और साल का? ना ना ना, वो तो शरीर।
अच्छा, वैसे एक दो दिन, तीन दिन का
हूँ। तीन दिन का बच्चा हूँ। हाँ, तीन दिन के बच्चे हो क्या भाई? तीन दिन का बच्चा है ये? वो आपकी माँ है। अच्छा, वेरी गुड। अगर आप इनको अम्मा समझो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे वो दिखाते ना, महात्मा गांधी ने भी कस्तूरबा को क्या कहा, बा माना माँ बना दिया, तो दृष्टि बहुत पवित्र रखेगी। और फिर जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी कहा शारदा माँ, तो माँ कहा माना, तो दृष्टि कैसे होगी? एकदम पवित्र दृष्टि। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ देखो, अभी तीन दिन का बच्चा पैदा, अभी पैदा हुआ है। आपको खुशी है ना? बहुत खुशी है ना? सच्ची? वेरी गुड। हाँ भाई, इनके लिए, दोनों के लिए ताली तो बजाओ। जी, अच्छा, माँ शिकायत करती है बच्चे की? नहीं नहीं, अभी तो सीधा हो गया। चंचल नहीं भाई, चंचल है क्या बच्चा है? थोड़ा थोड़ा चंचल है जी। बाबा ने अपना बना लिया तो इसलिए समझदार हो गया जी। हाँ, अभी अकेली नहीं है, आप साथ में। हम कहते हैं दोनों पहिए ना साथ में चले, एक जैसे हो। अब एक पहिया इतना बड़ा हो, एक पहिया छोटा हो, तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? कई लोग कहते हैं भाई ये लोग घर फिटाते, हम कहते हैं हम तो घर को स्वर्ग बनाते हैं, फिटाते थोड़ी है। हम तो घर घर को स्वर्ग बनाते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण अगर घर में हो तो वो घर क्या हो गया? स्वर्ग हो गया ना। तो घर फिटाने की तो कोई बात ही नहीं है। और ही अगर पहले कुछ अनबन हो ना, वो भी बन जाती है, फिर भी एक हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को देखते हैं तो इतनी पवित्र दृष्टि हो जाती है। तो उस वो दृष्टि भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, तो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान आए हैं घर घर को स्वर्ग बनाने। जी, क्या कहा? किसको? जी जी जी, अच्छा लगता है ना अभी? जी बस, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, एक सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा हमको ऐसे कहते, कुछ आपस में कुछ हो भी ना, बाबा कहते उस समय तीन बिंदु लगा दो, एकदम खत्म। तीन बिंदु माना, तीन बिंदु का मतलब बाबा क्या देते हैं? नहीं, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, तीन बिंदु लगा दो। और ये तीन बिंदु पता है क्या बन जाएंगे? ये शिव बाबा 1, उसके आगे 0 0 0, 3 0, 1000 बन जाएगा। इतनी कमाई होगी आपकी, ठीक है? और जितनी बार ये बिंदु लगाते गए, आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, ये भी समझना। खुशी होगी ना? और लड़ना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट शुरू किया, वो 0 हटता जाएगा, हटता जाएगा, ठीक है? तो ऐसा अनुभव सभी को करना है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? और फिर जो यहाँ पाया है उस वो जाके बांटना है, सेवा करनी है, तभी तो बढ़ेगा ना। तभी बढ़ेगा जब बांटेंगे, बांटेंगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे? बांटो, खाओ और खिलाओ। हम कहते हैं यही है, चार प्रकार की वृत्ति होती है, ये भी नोट कर सकते हैं। एक वृत्ति है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ये है एक वृत्ति। वो तो लोभी व्यक्ति है, अभिमानी व्यक्ति है, वो तो बाबा कहते कभी सोचना भी नहीं, किसी और का लेना है जरूर, सोचना भी नहीं, वो तो दानव कहलाता है, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। दूसरा है मानव, साधारण इंसान, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। दो भाई हैं, लेकिन बंटवारा हो गया, दीवार बीच में बना दी, तो मेरे घर में नहीं आना, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, तो मेरा नहीं मांगना। ये क्या हो गया? साधारण बात। चलो समझौता हो गया तुम्हारा ये मेरा, तो मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, ठीक है, न तुम से मांगूंगा न मैं तुमको अपना दूंगा। तीसरा है देवत्व स्थिति, तो दानव मानव और देव, तो देव क्या कहेगा, मेरा भी तेरा, ऐसे नहीं, मेरा और तेरा ये हम सब का, दिस इज द डिफरेंस, मेरा और तेरा ये हम सब का। अब देखो हम यहाँ रहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं ये मेरा आश्रम है मेरा, हम क्या कहते हैं ये बाबा का घर है, हम सब का घर है, तो हम सब का है ये देवत्व स्थिति है। और योगी की स्थिति इनसे भी ऊंची, योगी की स्थिति क्या है, योगी की वृत्ति क्या होगी, न कुछ मेरा न कुछ तेरा ये सब उसका, समझा, ये चार बातें। दानव की वृत्ति क्या है, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, और मानव की वृत्ति क्या है, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, और देवता की वृत्ति क्या है, मेरा और तेरा ये सब हम सब का। देखो पहले जमाने में अब मेरे घर में शक्कर नहीं है तो मैं पड़ोसन के पास जाती थी, जरा शक्कर तो दो, अब उसके घर में चाय नहीं है मेरे घर में आएगी चाय पत्ती तो दो, और खास करके तब तो वो सिगड़ियां जलती थी तो टांडे होते थे, तो दूसरे के घर में जाकर के टांडा मांगते थे कि मुझे आग जलानी है तो इधरा जला हुआ कोयला तो दो। आपने किया ऐसे, हाँ देखो ये बता रहे अभी जी, ऐसे दूसरे पड़ोसन के घर में जाते थे ना तो पड़ोसन से मांगते थे, तो आपस में बहुत फ्रेंडशिप होती थी, इसीलिए हमेशा कहते अपने पड़ोसी को कभी अपना दुश्मन नहीं बनाना, क्योंकि अंत में वही काम आएंगे, आपके पड़ोसी काम आएंगे, है ना, पड़ोसी को कभी भी उनसे वैर नहीं रखना, हमेशा मित्रता रखना, क्योंकि बाकी सब तो दूर होंगे, पड़ोसी तो आपके पड़ोस में ही होगा, वो आपका बहुत बड़े काम आएगा जी, हाँ पहले तो वही काम आएगा, दूसरे तो बाद में काम आएंगे, उनको जब तक पता चले कोई भी बात हो तो, इसलिए हमेशा उनके साथ मित्रता बना के रखना, कोई भी कोई चीज है उनको देना है लेना है इतना सहज हो जाता है क्योंकि पड़ोसी आपके साथ है। तो इसीलिए देवता माना मेरा और तेरा ये हम सब का, और योगी न कुछ मेरा न कुछ तेरा ये सब उसका, हा? मेरा कुछ नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त ट्रस्टी, छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, नया जोड़ना भी कुछ नहीं है, क्योंकि फिर हिसाब किताब बन जाएगा, नए नए हिसाब किताब कर्म जोड़े तो फिर चुकतू कब करेंगे, और क्या करना है, न छोड़ना है, छोड़ो भी कुछ नहीं, छोड़ के कहाँ जाएंगे, अगर आपका कर्मों का हिसाब किताब है अगर छोड़ के गए वो हिसाब किताब पीछे आएंगे कहाँ जाएंगे, तो छोड़ना भी कुछ नहीं, फंसना भी कहीं नहीं है, क्योंकि मेरा कहा तो फंस गए, फंसना भी नहीं है, फिर नया जोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ेंगे तो कब चुकतू करेंगे, और लेकिन चौथा क्या करना है, निभाना है, निभाओ जो है खुशी खुशी निभाओ, और साक्षी दृष्टा होके देखो दुआएं दो, एक खुशी खुशी निभाओ, दूसरा साक्षी दृष्टा होके हरे का पाठ देखो, और साथ साथ दुआएं दो, तो पिछला कुछ भी कर्मों का हिसाब किताब होगा वो चुकतू हो जाएगा, नहीं तो और जितना हम मेरा मेरा ये सब किया बंधन बढ़ते जाएंगे, तो बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ से जाकर क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, बताया ना बहन जी ने, परिवर्तन, क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन क्या लाएंगे, कुछ तो बताओ, कोई तो बताए क्या परिवर्तन लाएंगे, किसमें परिवर्तन लाएंगे, बिनी बहन दो शब्द, हमारी बिनी बहन आई है, वो भी हमेशा जब भी आती कुलाबा के भाई बहने आते ना तो बिनी बहन भी सबसे मिलती है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ की पीआरओ है तो ग्लोबल हॉस्पिटल में आप सेवा देते हैं या माउंट आबू में ही रहते हैं। बचपन से ही बाबा मामा की बाबा की मानो पालना ली है, इनका परिवार है, इनका भाई है और ग्लोबल हॉस्पिटल में ही ग्लोबल शॉप है। इनके माता पिता तो ये दिल्ली से आए थे और यहाँ सेटल हो गए हैं काफी सालों से, लेकिन ये भी जैसे बाबा की समर्पित बच्ची है, भले हॉस्पिटल में सेवा करती है मधुबन में समर्पित रूप में ही जैसे है। और बहुत इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, ब्रह्मा कुमारीज में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, ब्रह्मा कुमारीज में। थोड़ा वो बताओ भाई एक मिनट तो शब्द बोलना खुला है, बस 5 मिनट के। अभी नैरोबी होकर के आई है, मॉरिशियस होकर आई है, वहाँ भी बाबा के बहुत सुंदर सेंटर देखे इन्होंने। बीच में अमेरिका भी आप जाते रहते हैं, वहाँ भी कोई संस्था है जिसकी आप भारत की डायरेक्टर बनी है तो इनको बुलाते रहते हैं, अवार्ड्स भी आप लेते रहते हैं, ये भी इनका भाग्य है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो आदरणीय शीलू बहन को हम थैंक्स देंगे क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, मैं 6 साल की थी, हमारा पूरा परिवार पहले यहाँ आ गए, पेरेंट्स भी, भाई बहन है, लेकिन हम जो सीखते गए ना उस समय छोटे थे तो शीलू बहन से बहुत सीखते रहे। तो तालियां दीदी के लिए पहले दो। कोई ना कोई इंस्पिरेशन जो है हमारे जीवन में बना रहता है, तो दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा, दादियों से भी सीखा। तो अभी जो 4 बातें दीदी ने बताई ना, कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना, हम सभी के लिए है। तो कुछ भाई बहने मुझे कह रहे थे दीदी आपने हमारा क्लास भी नहीं लिया, मिले भी नहीं, तो इसीलिए मैं जस्ट ओम शांति करने के लिए आई हूँ कि आप सभी तो यहाँ से भरपूर होकर जा रहे हैं। ये ऐसी भूमि है जो हम सबको भरपूर करती है और हम प्रतिदिन सीखते जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत लकी हैं, आपको मधुबन के अंदर रहने का चांस मिलता है जिसमें कण कण के अंदर शक्ति भरी हुई है। तो एक बार दादी जानकी से हम मिल रहे थे तो हमने कहा दादी जी से, कोई किसी ने प्रश्न पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत ऐसी होती है और कभी कभी तो हम देखते हैं ऐसी तबीयत है लेकिन आप तो इतना अच्छा चलते हैं, और उस समय तो दादी स्टिक भी नहीं ले, कुछ भी नहीं, आपके हाथ में आप चलते हैं। तो दादी ने पता बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये पूरा जो शांति स्तंभ और ये पूरा एरिया है यहाँ का, जब मैं इसमें चक्कर लगाती हूँ तो बाबा मुझे ऐसी शक्ति देता है कि मैं जैसे कि कुछ भी होते हुए मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि मैं चलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तपस्या। तो सोचिए आपने कितने चक्कर लगाए होंगे यहाँ पर, कितनी एनर्जी भरी होगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम जो है हमेशा अपने जीवन में भरते जाएं। तो 3 सी बाबा हमें कहते हैं कि याद रखें। पहला सी है कनेक्शन। बाबा के साथ हमारा संबंध जहां लूज होता है, जैसे दीदी भी बता रहे थे, वहां प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। बाबा के साथ हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे तो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। दूसरी बात कभी जीवन में न भूले वो है करेक्शन, अपने को सुधारना, अपने अंदर जो कमी है। हम संपूर्ण नहीं बने हैं लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन ठीक रहता है तो हम छोटी 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 कमियों को देखकर भी उनको हम सुधार सकते हैं। और तीसरी बात है
तो कनेक्शन और करेक्शन, और तीसरा सी
है कलेक्शन, कलेक्शन,
कलेक्शन,
कलेक्शन करना अपने जीवन के अंदर। जैसे अभी आपने दीदी से सुन रहे थे कितना अच्छा कलेक्शन, माना हमें मधुबन में 3-4 दिन में कितना सुंदर कलेक्शन मिला। तो जो कलेक्शन है, कहते हैं ना कभी कभी कहते हैं यहाँ
ज्ञान रत्न, यहाँ से कलेक्ट करके जा रहे हैं, तो जमा करके जा रहे हैं
जी। तो सबसे बेस्ट कलेक्शन कहाँ मिलता है? मधुबन में सबसे बेस्ट कलेक्शन है। तो यहाँ पर से जो आप कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं उसको हमें प्रतिदिन अपने जीवन में खुशी बनाए रखने के लिए, जो दीदी ने कहा ना खुशियाँ, दुआएं अपने जीवन में सबके प्रति, सबको देखे और साक्षी भी रहे, तो वो हम अपने जीवन में मेंटेन कर सकते हैं। मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत खुशी हुई।
सबने ग्लोबल हॉस्पिटल देखा कल? हाँ, सबने देखा जी
जी जी, उस समय कुछ प्रोग्राम में बिजी थे तो टाइम में पूछ भी रही थी कि किस टाइम में आए, पर पता नहीं चला आप लोगों का।
नहीं तो जब भी कुलाबा वाले ग्लोबल हॉस्पिटल जाते हैं यही अटेंड करती है
जी।
डॉक्टर प्रताप मिले कि नहीं?
नहीं, वो मॉरिशस।
अच्छा,
वो मॉरिशस।
मॉरिशस गए हैं प्रताप भाई? अच्छा,
प्रताप मॉरिशस गए जी। तो बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर।
बहुत अच्छा, अभी जोरदार ताली बजाएंगे। इंदिरा बहन जिन्हें भी देखो अंत तक निभाया आपके साथ, इंदिरा बहन ये भी हमारे साथ ही रहती है। आप भी गांधी सेंटर पर काफी समय रही, अभी मधुबन में हमारे साथ है। चलो अभी हम सभी बाबा की याद में तीन मिनट जी। गायत्री बहन को बहुत बहुत थैंक्स, कितनी मेहनत करके इतने सबको लेकर के आई। हाँ गायत्री बहन, आपको भी हमारी कुलाबा की सखी है। हाँ, हम भी कुलाबा में, मैं तो बताऊं अपनी हंसी की बात ना, मतलब कुलाबा में ही हम रहते थे, घर में रहते थे, कॉलेज पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा बंधन था घर में। तो अब मेरे को लगन बहुत थी, सेवा करूं सेवा करूं सेवा करूं, पर कॉलेज जाती थी तो शाम को मैं आती थी। हमारी दादी पुष्प शांता थी, दादी आत्म मोहिनी थी, बहुत प्यार करती थी दोनों दादियां हमको। तो दादी हमको कहती थी शाम को तुमको यहाँ कोर्स कराना है, तुमको क्लास कराना है। अब मैं तो कॉलेज की ड्रेस में आती थी तो एक ड्रेस रख दी थी सेंटर पर, कुलाबा सेंटर पर, और मैं आकर वो ड्रेस मतलब सफेद साड़ी पहन लेती थी और कोर्स कराती थी और शिविर भी कराती थी। बहुत कुछ उस समय तो बहुत ही कुछ कराते थे। फिर भूख लगती थी तो दादी हमारे लिए खाना भी रखती थी। मैं कहती नहीं दादी, मैं घर जाके खाऊंगी, लेकिन नहीं, खाके जाओ खाके जाओ। शिलू इतना प्यार करती थी हमारी दादी पुष्प शांता। फिर क्या हुआ, जब बीएससी पूरी हो गई तो उसके बाद अब घर से फोर्स आई, नौकरी करो, पढ़ो, ये करो वो करो। मुझे नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे बाबा की सेवा करनी है और मुझे मुंबई में भी नहीं रहना है, मुंबई में रहूंगी तो यहीं फंस जाऊंगी मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो फिर देखो उसी समय दादी पुष्प शांता कही नहीं तुम कुलाबा में रहो, यहाँ पर इंग्लिश सेवा है, बहुत आएंगे। लेकिन हमने उस समय ही संकल्प किया नहीं मुझे बाहर सेवा करनी है। तो फिर बड़ी दादी जी यहाँ आए थे और बड़ी दादी ने मुझे बेंगलोर भेजा, लेकिन कुलाबा तो कभी भूल नहीं सकता है उनको, क्योंकि अन्न खाया हुआ है कुलाबा का तो इसीलिए आप सब भी कुलाबा के भाई बहन ही हैं, भले और जगह रहते होंगे लेकिन आपका बीज तो कुलाबा में ही है। तो जरूर हम भी आएंगे, हमारी गायत्री बहन बुलाती रहती है कब आएंगी कब आएंगी, पर बॉम्बे आना नहीं हुआ है, बहुत समय से बॉम्बे नहीं आई हूँ, और मुंबई तो इतना बड़ा है, कहाँ जाए कहाँ न जाए। तो इसीलिए जरूर अगली बार आएंगे बिल्कुल। लेकिन हम आए थे जब 50 साल, कितने साल हो गए इसको, कब कौन से सन में किया था आपने? 66 2016। जरूर 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 आए, तो अभी 3 साल हो गया तो बहुत अच्छा। 2016 में 50 साल, मुझे याद है जिस समय कुलाबा सेंटर का उद्घाटन हुआ था 1966 में, उस समय मैं कॉलेज अभी शुरू किया था 66 में, और बहुत सुंदर रूप से कुलाबा सेंटर का उद्घाटन हुआ था। तो कहाँ 50 साल बीत गए पता ही नहीं चला। आप सब हीरे हो, ज्वेल्स हो कुलाबा सेंटर के, तो बहुत खुशी होती है आप सब से मिलकर। पर आते रहना, बाबा का ज्ञान वहाँ सेंटर पर सुनते रहना, आत्मा की झोली भरते रहना और अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।